नवायमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वो कभी थकता नहीं, अपितु वो अधिक अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुह्य कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा एक वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकलकर और उस असुर को वध करके मित्र सहित जमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों देखो ना, ये स्थान कलेवा करने तथा जमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केखा वृक्षों की पत्तियों की सराहट के से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्ष द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यही कलेवा करें, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दे और जमुना का जल पीने दे। जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। कृष्ण से ये प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यह कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठा कर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखड़िया लग रहे थे। सारे बालक फूल पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र करके उन्हें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठट्टा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेंट में और अपना महिष सिंह तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाई ओर धकेल दी। उन्होंने दही मक्खन चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाई हथेली पर रखा जो उनके कमल दल जैसी अंगुलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसते वृंदावन में अपने मित्रों को साथ कलेवे का आनंद लूट रहे थे। ये दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चढ़ते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमश दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उसके पास नहीं हैं, तो वे उनके सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भाई के हंता है। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलयुग का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाए। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों की गुफाओं तरह झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं न मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वालवाल श्री भगवान हैं, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखने चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें ये समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों को अपहरण कर लिया है, अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, जबकि माता अत्यंत शोकाकुल होगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं, अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषणों में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूपादि में ठीक उसी रूप में विस्तारित किया। वे बछड़े भी बने जो अपने आकार रंग कार्य में सर्वथा भिन्न थे। ये सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है, परस ब्रह्मनो शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो पदार्थ हो या जीवों की कार्यकलाप, ये सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं। इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिर कर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञान न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालक बालकों के माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों के स्तन पान कराया, किंतु ये दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाना जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। ये एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तन पान करा रही थी, अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी ये अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहला कर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इस प्रकार गायें भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगे अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपने माताओं के पास आए और उनके माताओं गौवे उनके शरीर को चाटने लगी। गौवों तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति ये संबंध पहले की तरह बन रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहाँ नहीं थे। वस्तु तो गायों का बछड़ों के प्रति और गोपियों का अपने बालकों के प्रति ये वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया, उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि ये बछड़े तथा बालक उनके संतान न थे। यद्यपि वृंदावन की गौवे तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका ये प्रेम वात्सल्य अपने संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वो कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार एक वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चरागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार एक वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। तो यहाँ हमें एक बहुत सुंदर ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है कि भगवान के प्रति जो प्रेम, वो माता को अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उससे भी अधिक होता है। इसलिए चूंकि भगवान अपने आप को एक इस ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किए थे, तो बच्चे लोग जब घर वापस आए तो माताओं ने अनुभव किया कि उनके प्रति, अपने बालकों के प्रति जो प्रेम था वो और भी ज़्यादा हो गया है, और भी बढ़ गया है। क्यों बढ़ने का कारण क्यों था? क्योंकि ये प्रेम अब भगवान के प्रति हो रहा है। तो इससे क्या हमें जानकारी होता है, क्या हम समझते हैं कि भगवान के प्रति जो जीव का जो प्रेम है वो प्रेम और किसी जैसे वात्सल्य प्रेम, अपने माता का जो अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उससे भी अधिक होता है। और ये सारे मतलब भौतिक जगत का प्रेम से, भौतिक जगत के जो संपर्क का जो मूल आधार हैं, उससे भी भगवत प्रेम बहुत अधिक होता है। एक वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते देखा। वे गौवे वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों के देखकर गौवे उनकी ओर दौड़ने लगे। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आई। ये गौवे अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरागाह तक के ऊबर खाबर मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपने पूछे ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गए। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेम बस दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों को के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी ये आशा नहीं की जाती कि वे उन गायों के दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चढ़कर अपने तृप्त थे। फिर भी गाय तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गौओं तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। जब गौ गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहाँ तक संभव होता है बछड़ों को गांव से पृथक रखा जाता है जिससे वे गांव का सारा दूध ना पी जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया किंतु वे असफल रहे। अपने असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं को बछड़े को ठीक से देख रेख कर रहे हैं तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विह्वल हो उठे। ये अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्याग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्र के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंधे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्र का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपने गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्र से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौओं तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्र के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि ये असामान्य बात क्यों हो रहा है। वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपने अपने संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार की वे कृष्ण के प्रति हैं। इस तरह सारी गौवें अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी की कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने ये निष्कर्ष निकला कि ये प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा है या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा ये अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने ये निष्कर्ष निकला कि ये रहस्यात्मक परिवर्तन हो ना हो कृष्ण द्वारा लाया गया है। जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे, उन्होंने सोचा ये कृष्ण द्वारा संपादित है, अरे मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक ना पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। तो ये बलराम को आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, केवल पिता का अपना पुत्र के प्रति ही ऐसा प्रेम नहीं, बल्कि बछड़ों के प्रति गाय का जो प्रेम, वो उनको बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि बछड़ों के प्रति जो प्रेम गाय का होता है, जब नया बछड़ों पैदा होता है तो जो बड़े बछड़े हैं उसके प्रति गाय का प्रेम नहीं रहता, बल्कि यहाँ यद्यपि ये गाय सब बछड़ों बड़ा हो गया और गाय का नया बच्चा बछड़ों हुआ था, बल्कि इसके प्रति अधिक प्रेम क्यों हो रहा है। और उसके बाद जब देखा कि ग्वालो गाय को रोकने को कोशिश किया, बल्कि जब वो रोक ना पाया तो बहुत ही क्रोधित हो गया, बहुत अप्रसन्न हो गया उनका, जैसा जो काम जब सीधा नहीं होता है, सही रूप से जब काम नहीं हुआ है तो उनका थोड़ा मन में असंतोष था, दिल में कुछ क्रोध था। बल्कि जब ही वो गोवर्धन से नीचे उतर आए और अपने बच्चे को देखा, बस उसका क्रोध एकदम बिल्कुल छूमंतर हो गया, एकदम बिल्कुल निकल गया, और उनका मन एक प्रेम वात्सल्य प्रेम से द्रवित हो गया। तो बलराम को ये आश्चर्य लगा, और आश्चर्य लगने का कारण ये था कि उस दिन बलराम वहाँ नहीं थे। जिस दिन ब्रह्मा ने गाय चुराया और अघासुर का जो ये हुआ था, अघासुर का संहार हुआ था, उस दिन बलराम का जन्मदिन था, इसलिए माँ रहिणी बलराम को घर में रख दिए थे। बोला बेटा आज तुम घर गाय चराने मत जा, तू घर रह, घर में रह। तो इसलिए बलराम उस दिन वहाँ नहीं थे, और उस दिन ही ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को और बछड़ों को चुराया था। और इसका एक अच्छा हम इसके बाद पढ़ते रहेंगे। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वालों या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं, ये सब तुम ही हो, और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो, इसका क्या रहस्य है। वे सारे अन्य बछड़े तथा बालकों कहाँ हैं, और तुम स्वयं को बछड़े और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकेंगे कि क्या कारण है। बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे, और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी ये न जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। जब कृष्ण तथा बलराम का इस प्रकार बातें कर रहे थे तो ब्रह्मा एक क्षण में अनंतर अपने आयु के अनुसार लौट आए, और मतलब बछड़े को रखकर एक क्षण में ब्रह्मा का विचार से, ब्रह्मा का गणना के अनुसार लौट आए। हमें भगवद गीता में भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्ति होता है। ब्रह्मा के बारह घंटे चारों युगों के अवधि से 1000 गुना अर्थात 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 वर्षों का तुल्य होता है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। ब्रह्मा के एक क्षण हमारे विचार, मनुष्य का विचार में, पृथ्वी का विचार में 1 साल होता है, 1 साल की, 1 वर्ष की तुल्य है। अपने गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौट आए, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि ये आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गौवे कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है, अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं हो? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण के लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा ये जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्द में स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनके योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपनी प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वो श्वेत दीप्ति नहीं रहती और न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वो रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो वो स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वो हास्यास्पद हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा अपने निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। ब्रह्मा से इस बात से विश्वस्त करने के लिए कि ये सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए। वास्तव में अपने असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों से ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण का विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे, सबों को चार चार भुजाएं थी जिससे जिसमें वे शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जटित देदीप्यमान मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्णाभूषण से मंडित थे और फूलों का मालाएं धारण किए थे। उनके वक्षस्थलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में नूपुर थे, कटी में सुनहरी घंटिकाएं थे और अंगुलियों में रत्न जटित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने ये भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सर तक त्वाजा तुलसी दल अर्पित किए गए हैं। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता ये थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन अतः उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे सब तमो तथा रजोगुणों का सृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा तथा पालक हैं। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक शूद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बाज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप जग जोग शक्ति से पूर्ण हैं। उनमें अनिमा अनु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 ही तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति की तीन गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को ये भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत्य चित तथा आनंद के आगार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवता में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु हैं। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालक तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे, मतलब कि विष्णु का स्वयं प्रकाश था। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेक अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। उदाहरणार्थ सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वो सूर्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वो सत्य ज्ञानानंद है, वो सत्य ज्ञान अनंतानंद है। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल हैं कि उपनिषदों के निर्गुण अनुजाई ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते हैं कि उन्हें समझ सके। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेष वादियों की पहुँच के परे हैं, क्योंकि वे उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य न तो पदार्थ हैं और न भौतिक दृष्टि से सीमित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार से अपनी सीमित शक्ति द्वारा ये समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान हैं। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर और अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे ये अनुभव कर सके कि वे स्वयं काठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया की ही सृष्टि हैं। जिस प्रकार काठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेश अनुसार नाचती हैं, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी भगवान के अधीन हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं, अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु जो ही मनुष्य को ये बोध होता हो जाता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है, तो ये माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की देवी की अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति माया के समक्ष पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया था उसे देखकर भी व्याग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि वे ये देखते हुए कि कृष्ण की इस प्रकार स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में स्थानांतरित किए करके विष्णु के रूप का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपने जोगमाया का आवरण हटा दिया। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान जोगमाया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है। जो वास्तविकता को आवरित कर ले वो महामाया या बहिरंगा शक्ति है, जिसके कारण बद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। किंतु जो शक्ति भगवान को अंशत प्रकट करती हैं और अंशत मनुष्य को देखने नहीं देती, वो जोग माया कहलाती हैं। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है, वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए, अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है अपितु समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। जोग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्याग्र न हो जाए। जब ब्रह्मा जी की व्याग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जगे हैं। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने बाह्य दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत हैं। उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंस पशु हिरणों तथा मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण निवास करते हैं। वे ये जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये स्थान अन्य स्थानों के अपेक्षा दिव्य हैं, जहाँ न काम वासना है और न लोभ। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले के अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में का एक टुकड़े रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे थे। जिस प्रकार वे एक वर्ष पूर्व इस सब के अंतर्धान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे, ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों के में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड, डंडा के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव के सम्मान प्रदर्शन करने के लिए वो दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों सिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमलों के छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। जो जो उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, तो वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपने आँखों पोंछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान विनय तथा ध्यान पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये इस अध्याय काफी लंबा था, लगभग 110 पृष्ठ था इसमें, 10 pages। तो मैं तो सीधा पढ़ लिया, आप लोग समझ गए? समझने में कोई असुविधा हुआ किसी को? सब समझ गए? ठीक है, तो कोई प्रश्न है? नहीं, बल्कि ये इस अध्याय में ब्रह्मा जी का क्या हुआ उसका वर्णन।
अलग अलग लीला जितना पुतनावाद से शुरू करके जितना आशीर्वाद हो रहा उसी टाइम देवता ने पुष्पविष्ट कर अलग अलग देवता सब समझ गए, केवल इंद्र और ब्रह्मा नहीं समझ गए कृष्ण
जोग माया की प्रभाव से। ये इसका वर्णन हुआ है, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि देवताओं ने तो कृष्ण के जन्म के समय वहाँ थे, तो जन्म के पूर्व ही उनको पता था कि कृष्ण स्वयं भगवान है, तो ब्रह्मा जी को कैसे पता नहीं चला? तो इससे क्या प्रतीत होता है कि भगवान का जोग माया का शक्ति इतना प्रबल है कि पल भर एकदम विस्मृति हो सकता है। भूल सकते हैं। और एकदम ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जी भी उनके द्वारा जोग माया के द्वारा ऐसे प्रभावित हुए, कुछ एक पल पहले उनका पता था बल्कि दूसरे पल उनका पता नहीं है। ऐसा नहीं क्योंकि ब्रह्मा जी देखा त्रिनावर्त का आघासुर का वध हुआ, बल्कि उसका और एक कारण का वर्णन ऐसे भी हुआ है कि ब्रह्मा जी ने देखने लगे कृष्ण को, मेरा प्रभु का लीला। बल्कि ब्रह्मा जी का जोग माया की प्रभाव से ऐसे ऐसे शक क्यों हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल वालों को साथ कृष्ण ने जब भोजन कर रहे थे तो उनका झूठा कृष्ण ने ले रहा था और कृष्ण भी का झूठा उनको चुरा कर ले रहा था ऐसे, तो ब्रह्मा जी का मन में ये भावना है मेरा प्रभु तो किसी को झूठा नहीं खाएंगे, नारायण किसी को झूठा नहीं खाते, सब नारायण का झूठा खाते हैं, नारायण किसी को झूठा नहीं खाते, बल्कि वृंदावन में भगवान अपने साथियों को झूठा खाते। तो ये देखकर ब्रह्मा जी का मन में थोड़ा सा शक आया था, और जब ऐसे सोचने लगे तब जोगमाया के द्वारा प्रभावित होकर भगवान को परीक्षा करने को, भगवान की परीक्षा करने का दंभ किया ब्रह्मा जी ने। तो ये लीला का ही मतलब यही है, जोग माया, माया माया का मतलब, माया का मतलब विस्मृति, भूल जाना। तो महामाया के प्रभाव से हम भूल जाते हैं और जोगमाया के प्रभाव से आध्यात्मिक जगत में, जोगमाया के प्रभाव से यद्यपि वे सब भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के साथ रहने वाले हैं, उनको उन्होंने भी भगवान के बारे में भूल जाते हैं। यस अंशु, ओके, ऑलवेज रिमेन हम्बल एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, दैट्स द ओनली वे वी कैन शील्ड आवर सेल्व्स फ्रॉम दिस प्राइड एंड एंगर एंड एनवी एटसेट्रा। भगवान के याद रखने से ये सब दूर हो जाते हैं, भगवान को सेवक के रूप में अपना परिचय जब हम सोच समझ लेते हैं, अपना परिचय में जब हम संपर्कित हो जाते हैं भगवान के साथ, तब माया की प्रभाव और नहीं रहता है। आज काफी देरी हो गए, बाद में करेंगे। आई हैव टू, ओके, सो ललिता देवी राधा रानी का सखी है और ललिता देवी कृष्ण के पक्ष लेती है और विशाखा राधा रानी के पक्ष लेती है, और ये ललिता देवी का पहला परिचय है, बाद में कभी हम ये करेंगे। अच्छा, कल और परसों क्लास नहीं होगा, कल परसों, क्योंकि राधाष्टमी के दिन काफ़ी लोगों का भक्तों का दीक्षा हो रहा है, तो इसके तैयारी के लिए हमको 2 दिन चाहिए। इस बार कम लगभग 70 भक्तों का दीक्षा होगा। हरि बोल। और ब्राह्मण कितना?
ब्राह्मण लगभग
12-13। अच्छा, लिस्ट बढ़ ही रहा है। गंगा नारायण जब हमको बोला 40, तो मैं बोला 40। कल गंगा नारायण हमको लिस्ट दिखाया, वो 40 नहीं था, वो 60 था। और बोला और भी बढ़ेगा। ठीक है, भक्ति हम भी चाहते हैं कि ये हमारा परिवार कृष्ण भक्त का परिवार बढ़ते रहे। हरे कृष्ण। तो इसलिए कल और परसों शाम का क्लास हम नहीं देंगे, शायद हाँ राधाष्टमी के दिन हम फिर से शुरू करेंगे क्लास। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे।